हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, यहाँ हजारों कहानियाँ हैं आपके लिए। अरमान ठाकुर अस्पताल के बेड पर पड़ा हुआ था और खुद को बहुत कमज़ोर महसूस कर रहा था। उसने सोचा था कि वो इतना ताकतवर है कि छोटी मोटी चोटें उसका तुच्छ नहीं बिगाड़ सकती, पर अब उसे ऐसा लग रहा था मानो वो कई महीनों से बीमार हो और बिस्तर से उठ ही नहीं पा रहा हो। दूसरी ओर आधी रात का समय था। मेहर अपनी माँ गजाला जी के साथ ठाकुर के मेंशन में मौजूद थी। तभी अचानक डोरबेल बजने की आवाज़ आई। उस वक्त घर में मेहर और गजाला जी ही मौजूद थीं। अरहम ठाकुर अपने भाई अरमान ठाकुर के साथ अस्पताल में था। जैसे ही मेहर ने दरवाज़ा खोला, उसके सामने राजवीर सिंघानिया खड़ा हुआ था। राजवीर को वहां देखकर मेहर हैरान रह गई। अगले ही पल उसकी हैरानी गुस्से में बदल गई। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहां आने की? उसने गुस्से से राजवीर की ओर देखते हुए कहा। राजवीर थोड़ा सा हंसा और बोला, क्या हुआ मेरी बीवी, क्या मैं अपनी एक्स वाइफ से मिलने नहीं आ सकता हूँ? मेहर का गुस्सा और बढ़ गया। तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम यहां से चुपचाप चले जाओ। अगर तुम यहां से नहीं गए तो मैं अभी इसी वक्त अपने सिक्योरिटी को बुलाकर तुम्हें यहां से बाहर फेंकवा दूंगी। मेहर का इतना गुस्सा देखकर राजवीर ने अचानक अपनी एक उंगली उसके होठों पर रख दी और बोला, क्या हुआ मेरी जान, क्या तुम भूल गई हो कि हमने कितना अच्छा क्वालिटी टाइम साथ में बिताया है? उसके बाद भी तुम मेरे साथ ऐसा बर्ताव कर रही हो? दैट्स नॉट फेयर मेरी जान, राजवीर ने बड़े ही आशिकाना अंदाज में कहा। मेहर को हैरानी हो रही थी। ये फालतू की बकवास बंद करो और सीधे सीधे बताओ यहाँ क्या करने आए हो, उसने दरवाजे पर खड़े खड़े ही राजवीर से कहा। राजवीर उसकी ओर देखकर मुस्कुराया। वाकई मेरी एक्स वाइफ तो कुछ ज्यादा ही समझदार है। अगर तुम्हें पता चल गया है कि मैं यहाँ किसी काम से आया हूँ तो कम से कम मुझे अंदर तो आने दो। इतना कहकर राजवीर मेहर को साइड में करता हुआ अंदर जाकर सोफे पर बैठ गया। सोफे पर बैठते ही वो मेहर की ओर देखकर मुस्कुराया और बोला, इस सोफे को देखकर तुम्हें क्या कुछ याद नहीं आता है? ये वही सोफा था जिस पर राजवीर ने कितने ही दिनों तक मेहर के साथ वक्त बिताया था। आखिरी बार जब वो मेहर के साथ इंटीमेट हुआ था तो वो इसी सोफे पर हुआ था। जैसे ही मेहर को सब कुछ याद आया, उसके गाल और कान लाल हो गए। ये फालतू की बकवास बंद करो और बताओ तुम यहां क्या करने आए हो, उसने गुस्से से कहा। राजवीर ने कहा, देखो मेरा ये वादा है कि ये वक्त दुश्मनी करने का नहीं है। तुम अच्छी तरह से जानती हो कि जोया हमारे खिलाफ है, लेकिन इस वक्त ताकत उसके हाथों में है, हम उससे नहीं जीत सकते हैं। और मेरे ये भी सुनने में आया है कि अगला प्रोजेक्ट भी जोया के हाथों में है और वो किसी ऐसी कंपनी को देने वाली है जिसके बारे में हम लोग सोच भी नहीं सकते हैं। इसीलिए मेरे पास एक आइडिया है। मैं यहाँ एक बिजनेसमैन की तरह आया हूँ। मैं पर्सनल दुश्मनी को साइड में रखकर आया हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि ये वक्त हम लोगों के हाथ मिलाकर काम करने का है। मेहर ध्यान से सुन रही थी। तुम कहना क्या चाहते हो, साफ साफ बताओ, राजवीर ने कहा। मैं चाहता हूँ कि तुम और मैं, यानी तुम्हारी और मेरी कंपनी एक हो जाए। जब हमारी कंपनियां एक हो जाएंगी तो हमारी ताकत भी एक हो जाएगी। मुझे पूरी उम्मीद है कि जोया हमें नहीं हरा पाएगी। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम एक बार फिर से, यानी मेरी कंपनी के साथ पार्टनरशिप कर लो। जैसे ही राजवीर ने सीधे सीधे अपनी कंपनी के साथ अरमान ठाकुर की कंपनी को पार्टनरशिप करने का ऑफर दिया, मेहर उसे हैरानी से देखने लगी। वो कुछ देर सोचने लगी क्योंकि कहीं ना कहीं राजवीर की बातों में उसे सच्चाई नजर आ रही थी। वो ये भी जानती थी कि वो जोया को अकेले नहीं हरा सकती हैं। राजवीर ने कुछ समय में जो अनुराधा की कंपनी को टेक ओवर किया था उसे उसने नंबर वन पोजीशन तक पहुंचा दिया था। अब राजवीर और अरमान ठाकुर की कंपनी लगभग एक जैसी ही थी। अगर वे दोनों कंपनियां एक हो जाती हैं तो वे आसानी से विदेशी सीईओ को टक्कर दे सकते थे। मेहर ने राजवीर की ओर देखते हुए कहा, लेकिन इसकी क्या गारंटी है कि तुम वाकई हमारी मदद करना चाहते हो? तुम कितने बड़े धोखेबाज और शातिर इंसान हो, मैं तुम्हें अच्छी तरह से जानती हूँ। राजवीर हंसने लगा। माई डियर एक्स वाइफ, आपको अपने छोटे से दिमाग पर ज्यादा जोर देने की जरूरत नहीं है। और वैसे भी तुम अच्छी तरह से जानती हो कि राजवीर सिंघानिया अपने प्रोफेशनल और पर्सनल काम को अलग अलग रखता है। ये वक्त ये सब चीज सोचने का नहीं है। ये अच्छा ऑफर है। अगर तुम अरमान ठाकुर के पेपर पर सिग्नेचर ला दो तो मैं भी पेपर पर सिग्नेचर कर दूंगा। इससे हमारी कंपनियां एक हो जाएंगी। ऐसा कहते हुए राजवीर ने अपनी पॉकेट से कुछ पेपर निकालकर मेहर के सामने रख दिए और फिर एकदम से खड़ा हो गया। अगर तुम्हारा जवाब हाँ हो तो पेपर साइन करवाकर मेरे ऑफिस में भेज देना। ओके डियर वाइफ, इतना कहता हुआ वो हल्का सा मेहर के गाल को छूता हुआ वहां से निकल गया। मेहर जल भुन गई थी, लेकिन उसने उसे कुछ नहीं कहा क्योंकि कहीं ना कहीं राजवीर का प्रस्ताव उसे बुरा नहीं लग रहा था। दूसरी ओर रात का दूसरा पहर चल रहा था। अचानक अरमान ठाकुर के कमरे से अरहम ठाकुर को कुछ आवाजें आने लगी। वो उसके कमरे के बाहर ही सोया हुआ था। जैसे ही वो अंदर गया वो देखकर हैरान हो गया। अरमान ठाकुर बेड पर अपने पैर पटक पटक कर मार रहा था। अरहम परेशान हो गया और जल्दी से डॉक्टर को बुलाने के लिए भागा। डॉक्टर वहां गए और अरमान ठाकुर को एक इंजेक्शन दे दिया। इंजेक्शन देने के बाद अरमान ठाकुर चैन की नींद सो गया, लेकिन अरहम को कुछ अजीब सा लगने लगा। उसने डॉक्टर से पूछा, अचानक से भाई को ये क्या हुआ? डॉक्टर शकपका गए और थोड़ा सा संभलते हुए बोले, जो मेडिसिन चल रही है उसके साइड इफेक्ट कभी कभी हो जाते हैं, जिसकी वजह से इंसान के शरीर में बेचैनी हो जाती है। अरमान ठाकुर साहब को वही बेचैनी हो रही थी। अरहम को संतुष्टि नहीं मिली, लेकिन उस वक्त वो चुप हो गया। कुछ ही देर हुई होगी कि पुलिस की सायरन की आवाज आने लगी। अरहम चौंक गया, रात के 1 बजे पुलिस वाले अस्पताल क्यों आए हैं? लेकिन अगले ही पल सारे पुलिस वाले अरमान ठाकुर के वार्ड में मौजूद थे। अरहम बहुत परेशान हो गया। इंस्पेक्टर साहब, किस लिए आए हैं आप? इंस्पेक्टर बोले, मिस्टर ठाकुर, आपके खिलाफ कंप्लेंट है, आपको इसी वक्त हमारे साथ पुलिस थाने चलना होगा। अरहम हैरान रह गया। अरमान ठाकुर तो नींद के इंजेक्शन के नशे में था, वो भी नहीं उठ सकता था। अब अरहम के पास इंस्पेक्टर के साथ जाने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था। उसने अपने वकील से बात करने को कहा, लेकिन इंस्पेक्टर ने मना कर दिया। अगली सुबह ही आप अपने वकीलों से बात कर पाएंगे। इतना कहकर वो अरहम ठाकुर को अरेस्ट करके ले गए। दूसरी ओर जोया और अबीर एक दूसरे को ढेर सारा प्यार करने के बाद एक दूसरे की बाहों में थे। अबीर सिंह राठौर ने जोया से कहा, जोया, आपने अपने सभी दुश्मनों से बदला ले लिया है, लेकिन क्या इनके लिए ये सजा काफी होगी जो आपने इन्हें दी है? जोया अबीर की ओर देखने लगी। सजा तो मैं इन सबको दे चुकी हूँ, लेकिन अभी तक इन्हें इस बात का एहसास ही नहीं है। बहुत जल्दी इन्हें अपनी सजा का एहसास हो जाएगा। जिस दिन उन्हें एहसास होगा, उस दिन मैं उनके सामने नहीं होंगी। इतना कहकर उसने अबीर को गले लगा लिया और अबीर ने फिर से जोया को किस करना शुरू कर दिया।